एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की कह सकते हैं भूल भुलैया में उतर रहे हैं जिन्हें 2500 साल बाद भी समझना मतलब एक चुनौती है।
नमस्कार।
एफिसस के हेराक्लिटस, जिन्हें अंधकारमय या गूढ़ भी कहा गया, तो सवाल यह है कि क्या उनके इन मतलब रहस्यमय लगने वाले विचारों में आज हमारे लिए कोई रोशनी छिपी है?
हाँ, हेराक्लिटस वाकई एक पहेली हैं। लगभग 535 से 475 ईसा पूर्व यानी सुकरात से भी पहले के विचारक।
हाँ,
उनकी सबसे मशहूर पंक्ति है, सब कुछ बहता है, पेंटा रही। लेकिन ये बहना क्या है? क्या ये सिर्फ अंधी दौड़ है या इसके पीछे कोई तर्क, कोई व्यवस्था है? इसी गुत्थी को
हाँ
सुलझाने की कोशिश आज हम करेंगे,
बिल्कुल।
क्योंकि उनके विचार मतलब आज भी हैरान करने वाले तरीकों से हमारे सामने आते रहते हैं।
तो चलिए पहले उनके ज़माने को समझते हैं। इफिसस, आयोनिया का एक फलता फूलता शहर आज के तुर्की के तट पर। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार मिथकों और देवताओं की कहानियों से, कह सकते हैं आगे बढ़कर, अपनी बुद्धि और तर्क से दुनिया को समझने की जुर्रत कर रहा था।
हाँ, ये यूनानी दर्शन का उषाकाल था कह सकते हैं। फारसी साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था, जिसका असर आयोनिया पर भी पड़ रहा था। माहौल में एक बौद्धिक गर्मी थी।
अच्छा,
पाइथागोरस, ज़ेनोफेनस जैसे विचारक इसी दौर में थे। और हाँ, पार्मेनिडीज भी। हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज के विचार तो बिल्कुल आमने सामने खड़े थे।
ये दिलचस्प है। जहां हेराक्लिटस कह रहे थे कि भई बदलाव ही सच्चाई है, वहीं पार्मेनिडीज का मानना था कि असलियत तो स्थिर है, बदलती ही नहीं।
बिल्कुल। और ये होना, बीइंग, बनाम बनना, बिकमिंग का झगड़ा, ये आगे चलकर पूरे पश्चिमी दर्शन की बुनियाद बन गया। थेल्स या एनैक्सिमेंडर जैसे पहले के विचारक पूछ रहे थे कि भाई दुनिया किस चीज से बनी है, लेकिन हेराक्लिटस ने सवाल का रुख ही मोड़ दिया।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने पूछा, दुनिया चलती कैसे है, इसके काम करने का तरीका क्या है? ये एक बहुत बड़ा मतलब शिफ्ट था सोच में।
उनके निजी जीवन के बारे में कहा जाता है कि वे कुलीन परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सत्ता और समाज से थोड़ी दूरी बना ली थी।
हाँ, वे इफिसस के संस्थापक के वंशज माने जाने वाले एंड्रोक्लिस परिवार से थे। उन्हें विरासत में राजा बसेलियस का पद मिलना था,
ओह,
जो उस समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक और औपचारिक पदवी थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया दर्शन और चिंतन के लिए।
अच्छा,
यह अपने आप में असाधारण बात है, मतलब बौद्धिक जीवन को सामाजिक सत्ता पर तरजीह देना।
और उनका स्वभाव अंधकारमयी के साथ साथ रोने वाला दार्शनिक भी कहा गया उन्हें। कुछ ज्यादा ही निराशावादी थे क्या?
कहते हैं वे काफी एकाकी थे, मानव द्वेषी, मिज़ेंथ्रोपिक जिसे कहते हैं, और शायद कुछ निराशावादी भी। आम लोगों को, यहां तक कि अपने शहर के नागरिकों को भी वो अज्ञानी समझते थे।
अच्छा,
आखिरकार समाज छोड़कर पहाड़ों में रहने चले गए। कहानी यह है कि वे इंसानी मूर्खता पर रोते थे, इसीलिए रोने वाले दार्शनिक कहलाए।
और डेमोक्रेटस थे हंसने वाले।
हाँ बिल्कुल, इसके ठीक उलट थे डेमोक्रेटस, जो इंसानी मूर्खता पर हंसते थे।
ये एकाकीपन और समाज से कटाव शायद उनकी सोच को भी प्रभावित करता होगा, एक अलग नजरिया देता होगा।
जरूर, इससे उन्हें एक बाहरी नजरिए से दुनिया को देखने का मौका मिला होगा। बिना किसी स्कूल या परंपरा से बंधे उनकी सोच बिल्कुल मौलिक थी। एक और दिलचस्प बात, कहते हैं उन्होंने अपनी इकलौती किताब प्रकृति पर ऑन नेचर इफिसस के भव्य आर्टेमिस मंदिर में रखवा दी थी।
मंदिर में?
हाँ, शायद इसलिए कि आम लोग उसे आसानी से ना पढ़ सकें, या शायद वे उसे एक पवित्र धरोहर की तरह देखते थे। ये भी उनके अभिजात्य और घूढ़ स्वभाव की तरफ इशारा करता है।
तो आते हैं उनके मुख्य विचारों पर, जिनकी वजह से वे आज भी इतने प्रासंगिक हैं। सबसे पहले तो वही, सब कुछ बहता है, पैंटरेई।
हाँ, प्रवाह का सिद्धांत। उनकी सबसे प्रसिद्ध मिसाल है नदी की। आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते,
हाँ, ये तो बहुत सुना है।
क्योंकि ना वो नदी वही है और ना आप वही हैं। इसका मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं बदल रही, हम खुद भी हर पल बदल रहे हैं।
हर पल।
हाँ, हमारा शरीर, हमारे विचार, सब कुछ एक सतत प्रवाह में है।
ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। अगर सब कुछ लगातार बदल रहा है हर पल, तो फिर किसी चीज की पहचान कैसे मुमकिन है?
मतलब मेरा मैं होना, मेरी पहचान, क्या ये महज एक भ्रम है? क्या हेराक्लिटस यही कह रहे थे?
ये बहुत गहरा सवाल है और शायद यही उनका दूसरा अहम विचार विपरीतताओं की एकता, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, सामने आता है। स्थिर होने में नहीं बल्कि विरोधी ताकतों के लगातार तनाव और संतुलन में है।
तनाव और संतुलन में,
हाँ। जैसे धनुष या वीणा को लीजिए, उसकी शक्ति और संगीत उसके तनाव से ही पैदा होता है। अगर तनाव खत्म तो धनुष बेकार, वीणा बेसुरी।
सही बात है।
उनका एक मशहूर कथन है, ऊपर जाने का और नीचे आने का रास्ता एक ही है।
यानी विरोध और तनाव, ये बुरी चीजें नहीं बल्कि जरूरी हैं। ये तो हमारे आम नजरिए से बिल्कुल अलग है, हम तो अक्सर संघर्ष से बचते हैं।
हेराक्लिटस के मुताबिक यही तनाव, यही संघर्ष ही सृष्टि का इंजन है। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, सर्दी और गर्मी, ये विरोधी चीजें एक दूसरे से लड़ती हुई एक संतुलन बनाती हैं, एक हारमोनी पैदा करती हैं।
अच्छा,
ये हारमोनी शांत नहीं बल्कि गतिशील है, तनावपूर्ण है। शायद यही असली पहचान है, स्थिरता में नहीं बल्कि इस गतिशील तनाव में।
लेकिन क्या ये सारा बदलाव, ये सारा तनाव बस यूं ही, मतलब बेतरतीब ढंग से होता रहता है, या इसके पीछे कोई नियम, कोई व्यवस्था भी है?
बेहतरीन सवाल, और यही हेराक्लिटस का तीसरा और शायद सबसे रहस्यमय विचार आता है, लोगोस।
लोगोस, ये शब्द सुना है?
हाँ, लोगोस एक यूनानी शब्द है जिसके कई मतलब हैं, शब्द, तर्क, सिद्धांत, कारण, व्यवस्था। हेराक्लिटस के लिए लोगोस वो अदृश्य सार्वभौमिक तर्क है या सिद्धांत है जो इस निरंतर बहती और बदलती दुनिया के पीछे काम कर रहा है।
एक अदृश्य सिद्धांत,
हाँ। ये बदलाव का एक स्थिर शाश्वत पैटर्न है, ये वो छिपी हुई समरसता, हिडन हार्मनी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो प्रत्यक्ष से बेहतर है।
ये लोगोस का विचार थोड़ा अस्पष्ट नहीं लगता? कहीं ये चीजों को समझाने का एक आसान रहस्यमयी तरीका तो नहीं था? क्या इसका कोई ठोस आधार था उनके दर्शन में?
ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। लोगोस को समझना आसान नहीं है। ये कोई भगवान या कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि चीजों के अंदरूनी तर्क, उनकी संरचना का सिद्धांत है।
अंदरूनी तर्क,
हाँ, इसे आप प्रकृति का नियम कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा। सच्चा ज्ञान हेराक्लिटस के अनुसार इसी लोगोस को समझना है, ये जानना कि दुनिया कैसे काम करती है, ना कि सिर्फ ये देखना कि क्या हो रहा है।
तो इस निरंतर प्रवाह, विपरीतताओं के तनाव और छिपे हुए लोगोस को दर्शाने के लिए उन्होंने किसी चीज का इस्तेमाल किया, कोई प्रतीक?
हाँ, और वो चीज थी अग्नि, फायर। उन्होंने अग्नि को ब्रह्मांड का मूल तत्व या सबसे प्रतिनिधि तत्व माना।
अग्नि, आग, क्यों?
क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही है बदलना, और बदलना, वो खुद भी लगातार बदलती रहती है, लपटे कभी एक जैसी नहीं रहती हैं, है ना, और दूसरी चीजों को भी बदल देती है।
हाँ, ये तो है।
अग्नि ऊर्जा है, रूपांतरण है। उनके लिए अग्नि इस पूरी प्रक्रिया, प्रवाह, तनाव और लोगोस के अनुसार परिवर्तन का प्रतीक भी थी, और शायद उसका भौतिक आधार भी।
तो ये चारों विचार, प्रवाह, विपरीतता, लोगोस, अग्नि, ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए लगते हैं।
बिल्कुल, प्रवाह अराजकता नहीं है, वो लोगोस के अनुसार होता है। ये व्यवस्था विपरीतताओं के तनाव से चलती है, और अग्नि इस पूरी गतिशील प्रक्रिया का प्रतीक और कह सकते हैं जरिया है।
उनकी जो किताब थी प्रकृति पर, उसके बारे में आपने बताया कि वो खो गई है और सिर्फ टुकड़े मिलते हैं, और ये कि वो जानबूझकर मुश्किल भाषा में लिखी गई थी।
हाँ, हमारे पास लगभग 125 टुकड़े ही हैं जो बाद के लेखकों के कामों में उद्धरण के तौर पर मिलते हैं, और उनकी शैली वाकई अनोखी थी। सूत्रबद्ध, एफोरिस्टिक, यानी छोटे गहरे मतलब वाले वाक्य,
पहेलियों जैसे।
हाँ, पहेलियों जैसी, विरोधाभासी। इसे समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उनकी सोच की गहराई दिखाती है, कि सच जटिल होता है। दूसरे कहते हैं कि ये जानबूझकर किया गया ताकि सिर्फ काबिल लोग ही समझें।
या शायद वो भाषा की सीमाएं जानते थे।
हाँ, या शायद वे भाषा की सीमाओं को जानते थे और इशारों में बात करना बेहतर समझते थे। इसी शैली ने उन्हें अंधकारमयी का तमगा दिलाया।
अब जरा उनके और पार्मेनिडीज के विचारों के टकराव पर लौटते हैं। आपने कहा कि ये पश्चिमी दर्शन की बुनियाद बना, कैसे?
ये टकराव बहुत मौलिक था। क्या असलियत बदल रही है हेराक्लिटस, या स्थिर है पार्मेनिडीज? इस सवाल ने प्लेटो और अरस्तु जैसे बाद के महान दार्शनिकों को, मतलब, बहुत उलझाया। प्लेटो ने इसका हल निकालने की कोशिश की अपने फॉर्म्स या आइडियाज के सिद्धांत से। उन्होंने कहा कि ये जो बदलती हुई दुनिया हम देखते हैं, यह असलियत की परछाई मात्र है। असली दुनिया तो अपरिवर्तनशील शाश्वत फॉर्म्स की है।
अच्छा, यानी दो दुनियाएं बना दी उन्होंने। और
अरस्तु ने तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स में और गहराई से जाकर पदार्थ और आकार, संभावना और वास्तविकता के जरिए समझाने की कोशिश की कि चीजें कैसे बदलती हैं और फिर भी अपनी पहचान बनाए रखती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज की बहस ने दर्शन के लिए कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए।
तो हेराक्लिटस की विरासत क्या रही? क्या उनके विचार भुला दिए गए या किसी न किसी रूप में जीवित रहे?
उनकी विरासत का सफर भी कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा रहा है। प्राचीन यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने उनकी आलोचना की।
क्यों?
उनका मुख्य तर्क था कि अगर सब कुछ हर पल बदल रहा है तो फिर ज्ञान कैसे संभव है? हम किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से कैसे कुछ कह सकते हैं?
हाँ, ये तो वाजिब सवाल लगता है।
बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ स्टोइक दार्शनिकों ने, खासकर क्रिसिपस ने, उनके लोगोस के विचार को हाथों हाथ लिया। उन्होंने लोगोस को एक तरह का ईश्वरीय तर्क या ब्रह्मांडीय विधान माना जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है।
अच्छा, और आधुनिक जमाने में क्या आज भी लोग हेराक्लिटस को पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं?
बिल्कुल, आधुनिक युग में तो उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है कह सकते हैं। 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक हेगल,
हेगल हाँ,
हेगल ने हेराक्लिटस में अपनी द्वंद्वात्मकता डायलेक्टिक्स की झलक देखी। वो थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाली प्रक्रिया।
हाँ,
हेराक्लिटस का विपरीतताओं की एकता का सिद्धांत इसी प्रक्रिया की नींव जैसा लगता है।
और नीचे भी तो उनसे काफी प्रभावित थे।
हाँ, फ्रेडरिक नीचे तो हेराक्लिटस के बड़े प्रशंसक थे। उन्हें हेराक्लिटस की इस बात में दम लगा कि जीवन संघर्ष है और इस संघर्ष को, इस निरंतर बनने की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए, उसका उत्सव मनाना चाहिए, किसी स्थिर स्वर्ग या आदर्श की तलाश नहीं करनी चाहिए। फिर 20वीं सदी में अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड जैसे प्रक्रिया दार्शनिक, प्रोसेस फिलोसफर्स, उन्होंने भी माना कि ब्रह्मांड स्थिर चीजों का जमावड़ा नहीं बल्कि घटनाओं और प्रक्रियाओं का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। ये सोच सीधे हेराक्लिटस से जुड़ती है।
ये तो हुई दार्शनिकों की बात। क्या आज विज्ञान या दूसरे क्षेत्रों में भी उनके विचारों की कोई गूंज, कोई रेलेवेंस नजर आती है?
कई जगहों पे। क्वांटम भौतिकी को ही लीजिए, जहां टर्न एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं और वास्तविकता निश्चित नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल लगती है।
हाँ, ये तो है अनिश्चितता।
हाँ, अनिश्चितता। ये दुनिया हेराक्लिटस के पूर्वाह के ज्यादा करीब लगती है, न कि न्यूटन की स्थिर घड़ी जैसी दुनिया के।
और जीव विज्ञान या मनोविज्ञान में वहाँ भी कुछ है।
जीव विज्ञान में इकोसिस्टम को देखिए, कैसे शिकारी और शिकार, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, ये विरोधी ताकतें मिलकर एक गतिशील संतुलन बनाती हैं।
सही कहा।
सिस्टम थ्योरी और जटिलता विज्ञान भी यही बताते हैं कि कैसे कई छोटे बदलते हुए हिस्सों के आपसी तालमेल से बड़े अप्रत्याशित पैटर्न उभरते हैं।
जैसे लोगोस।
हाँ, एक तरह से लोगोस की तरह। और मनोविज्ञान में कार्ल यंग ने इंसान के भीतर विरोधी शक्तियों जैसे चेतन अचेतन, मर्दाना जनाना पहलू के संतुलन और एकीकरण पर जोर दिया। ये भी हेराक्लिटस की विपरीतताओं की एकता से काफी मिलता जुलता है।
ये सोचना भी दिलचस्प है कि आजकल जब हम बिजनेस में डिसरप्टिव इनोवेशन की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़कर नई व्यवस्थाएं बनाना, क्या ये भी हेराक्लिटस के संघर्ष से सद्भाव का एक आधुनिक रूप नहीं है?
बहुत अच्छा कनेक्शन है। बिल्कुल, पुरानी स्थिर लगने वाली चीजों का टूटना ही अक्सर नई, ज्यादा गतिशील और शायद बेहतर व्यवस्थाओं को जन्म देता है। ये हेराक्लिटस के दर्शन का एक व्यावहारिक पहलू है कह सकते हैं।
उनके कुछ कथन जो आज भी याद किए जाते हैं, नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते और ऊपर नीचे का रास्ता एक ही है, इनका जिक्र तो हमने किया। एक और है, छिपी हुई समरसता प्रत्यक्ष से बेहतर है। ये लोगोस की तरफ इशारा करता है ना?
हाँ, कि असली व्यवस्था या तर्क सतह पे नहीं दिखता, उसे गहराई से समझना पड़ता है। एक और कथन जो उनके मिजाज को दिखाता है, बड़े नतीजों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाओं की जरूरत होती है। शायद उनका इशारा ज्ञान की मुश्किल खोज की तरफ था।
उनकी मौत के बारे में भी एक अजीब सी कहानी है, वो गोबर वाली। कहते हैं जलोदर के इलाज के लिए उन्होंने खुद को गाय के गोबर से ढक लिया था।
हाँ, ये कहानी डायोजनीज लेटियस जैसे प्राचीन जीवनीकारों ने बताई है। कहानी के अनुसार उन्हें लगा कि गोबर की गर्मी से शरीर का पानी सूख जाएगा, लेकिन शायद इसी कोशिश में उनकी मौत हो गई।
अजीब है।
हाँ, अजीब है। हालांकि ये कहानी कितनी सच है कहना मुश्किल है। प्राचीन काल में जीवनी लेखक अक्सर मशहूर लोगों, खासकर दार्शनिकों की मौत को नाटकीय या प्रतीकात्मक बनाने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ लेते थे जो उनके दर्शन से मेल खाती हों।
अच्छा, तो जाहिर है इतने क्रांतिकारी विचारों की आलोचना भी खूब हुई होगी। एक तो उनकी भाषा की जटिलता, वो तो है ही।
हाँ, उनकी गूढ़ शैली हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। क्या ये गहरी सोच है या जानबूझकर पैदा किया गया धुंधलाका?
अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने उन पर गैर विरोधाभास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को तोड़ने का आरोप लगाया
कि कोई चीज एक ही समय में है भी और नहीं भी है, ये कैसे हो सकता है?
हाँ बिल्कुल, और प्लेटो की चिंता थी कि अगर सब कुछ बदल रहा है तो स्थिर ज्ञान पाना ही नामुमकिन हो जाएगा।
और क्या आज भी विद्वानों में उनके विचारों की व्याख्या को लेकर मतभेद हैं या अब सब सुलझ गया है? नहीं बिल्कुल है मतभेद। क्या हेराक्लिटस का मतलब था कि सब कुछ हर तरह से बदल रहा है एकदम रेडिकल फ्लक्स, या कि बदलाव एक स्थिर लोगोस के नियमों के तहत हो रहा है? जो टुकड़े हमें मिले हैं क्या वे सचमुच हेराक्लिटस के ही हैं या बाद के स्टोइक जैसे विचारकों ने उन्हें अपनी तरह से बदल दिया? ये बहसें आज भी जारी हैं और शायद हमेशा रहेंगी,
क्योंकि वो आसान जवाब नहीं देते।
हाँ, क्योंकि हेराक्लिटस हमें आसान जवाब नहीं देते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो हेराक्लिटस हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है और जहां विरोधी ताकतें टकराकर ही संतुलन और सार्थकता पैदा करती हैं।
सही कहा, वे हमें चुनौती देते हैं कि हम चीजों को उनकी सतह पर न देखें बल्कि उनके भीतर काम कर रहे तनावों, बदलावों और उस छिपे हुए तर्क को समझने की कोशिश करें।
तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हेराक्लिटस कहते हैं कि संघर्ष और तनाव जरूरी हैं, जैसे धनुष या वीणा के लिए। क्या हम इस नजरिए को अपने जीवन में, अपने समाज में होने वाले मतभेदों, असहमतियों और चुनौतियों पर लागू कर सकते हैं? क्या हर संघर्ष सिर्फ विनाशकारी होता है या उसमें नई रचना, नए संतुलन की संभावना भी छिपी होती है?
इस पर सोचिएगा जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।